ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में यमुना नदी के पुनरुद्धार पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राजधानी को एक वैश्विक गंतव्य बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में दिल्ली के लिए डिलाइट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ ने एक निजी शिक्षण संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्रावण मास के आज से शुरू होने के साथ ही दिल्ली में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की और राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में यमुना पुनरुद्धार पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन मोड पर काम करना चाहिए। उन्होंने यमुना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की क्षमता 2028 तक बढ़ाकर 1500 MGD करने का निर्देश दिया। गृहमंत्री ने यमुना में ई फ्लो बढ़ाने पर विशेष जोर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को यमुना पुनरुद्धार के लिए प्रयास करने चाहिए और अपने एसटीपी से निकलने वाले पानी के परीक्षण में नियमितता और पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने एसटीपी से निकलने वाले पानी के गुणवत्ता की तीसरे पक्ष द्वारा जांच पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओखला एसटीपी के उपचारित पानी को यमुना की निचली धारा में छोड़ा जाना चाहिए, जिससे नदी के पानी के गुणवत्ता में सुधार होगा। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली में लोगों के पानी की जरूरतों का पता लगाने के लिए दिल्ली में पानी की आपूर्ति के संबंध में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के साथ नई दिल्ली में दिल्ली के लिए डिलाइट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम दिल्ली को एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए पर्यटन में नवाचार, निवेश और नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। एक रिपोर्ट।
दिल्ली के लिए डिलाइट शिखर सम्मेलन में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश की नामी निवेशक कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, पर्यटन विशेषज्ञ और उद्यमी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की छवि को एक सकारात्मक शहर, राष्ट्रीय राजधानी और लाखों भारतीयों की दिल की धड़कन के रूप में फिर से परिभाषित करना जरूरी है। उन्होंने आशा जताई कि जब भी कोई विदेशी पर्यटक भारत आए तो वह दिल्ली देखे बिना वापस ना जाए।
एक पॉजिटिव सिटी, देश की राजधानी और करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन, और दिल्ली के पास वो सब है जो विश्व के टूरिस्ट को चाहिए। केवल एक प्लेटफॉर्म देना है जो विश्व के सामने आ सके, देश के हर राज्य की तरह दिल्ली का टूरिज्म भी बढ़े और दुनिया देखे दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत।
वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली अपनी संस्कृति, विरासत और आधुनिक सुविधाओं के संगम के साथ निवेश के लिए एक सुरक्षित, लाभदायक तथा टिकाऊ गंतव्य बनकर उभर रही है। श्री मिश्रा ने रेखांकित किया कि इस समिट के माध्यम से 8 से 10 ऐसे अहम निर्णय लेने में स्पष्टता और दिशा मिली है जो आने वाले समय में दिल्ली की जनता के हित में होंगे और साथ ही निवेशकों के लिए नए अवसर भी खोलेंगे। उन्होंने सभी निवेशकों को आमंत्रित किया कि वे शहर के इस परिवर्तन का हिस्सा बने।
आज के इस समिट को, जिसको अभी मुख्यमंत्री महोदया ने संबोधित किया है, हम प्रधानमंत्री जी का जो विजन है दिल्ली टूरिज्म को लेकर, दिल्ली के पर्यटन को लेकर, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आज के इस समिट से 8-10 बड़े निर्णय टूरिज्म सेक्टर के लिए निकलेंगे।
दिल्ली के लिए डिलाइट शिखर सम्मेलन द्वारा सरकार ने देश विदेश से आए अनुभवी दिल्ली के लिए डिलाइट शिखर सम्मेलन द्वारा सरकार ने देश विदेश से आए अनुभवी प्रतिभागियों से सुझाव लिए ताकि दिल्ली के विकास के लिए एक मजबूत और व्यवहारिक रोडमैप तैयार कर सके। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
कोविड 19 के दौरान हुई घटनाओं को लेकर दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पीड़ित को आज 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया। इसके अतिरिक्त सरकार ने पीड़ितों के दुकानों को 6 महीने का किराया माफ कर दिया ताकि वे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें। वितरण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कोविड से जुड़े मामलों पर मुआवजा कभी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में ऐसी कई फाइलें अब भी लंबित हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 8वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और वेलनेस एक्सपो का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय यह आयोजन 13 जुलाई तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य, आयुष, योग, पोषण, फिटनेस, जैविक कृषि, जीवन शैली और समग्र स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों, संस्थानों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को एक साझा मंच मिल रहा है। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि भारत के पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय से ही एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग जैसी भारतीय विधाएं केवल रोगों का उपचार नहीं बल्कि जीवन को पूर्णता, आनंद, ऊर्जा और उत्साह से भरने की विधियां हैं। दिल्ली के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रराज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 16 स्थित आम्बेडकर भवन में SC/ST कल्याण विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री इंद्रराज सिंह ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक भी छात्र पात्र योजना के लाभ से वंचित न हो। श्री सिंह ने कहा कि सामाजिक न्याय की सोच को धरातल तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.aiar.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आर्थिक विकास, अनुपालन और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने वाले आधुनिक और कुशल परीक्षण ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। श्री चौधरी ने आज नई दिल्ली में निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता विषय पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। अपनी तरह का यह पहला सम्मेलन केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आयोजित किया था। सम्मेलन में 400 से अधिक प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज PME ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहन देने की शुरुआत की। सरकार ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रकों के समर्थन के लिए योजना शुरू की है। एक रिपोर्ट।
इसका उद्देश्य देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाना और माल ढुलाई में टिकाऊ आवाजाही में मदद करना है। इसके अंतर्गत लगभग 5,600 ई ट्रकों के साथ स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक ट्रकों की मजबूती के सिलसिले में निर्माणकर्ता एक व्यापक वारंटी प्रदान करेगा। इसमें बैटरी के लिए 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी शामिल है। इस अवसर पर श्री कुमार स्वामी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए के व्यय के साथ दिल्ली में पंजीकृत लगभग 1,100 ई ट्रकों के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। श्री कुमार स्वामी ने बताया कि योजना के संभावित लाभार्थियों में सीमेंट, बंदरगाह, इस्पात और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में ई ट्रक उपयोगकर्ता शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रिया और दीपांकर की रिपोर्ट के साथ जया भारती।
दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह और नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण और नागरिक समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान महापौर श्री सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि अपने दौरे के दौरान किसी भी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति नहीं पाई गई। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे पूरे मानसून सीजन के दौरान सतर्क रहें, जिससे नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं सुश्री स्वराज ने सक्रिय प्रशासन की आवश्यकता पर बल देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में सभी गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरवाएं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली सरकार को वाहन प्रदूषण को लेकर विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे एक पत्र में सुश्री आतिशी ने रेखांकित किया कि वाहन प्रदूषणकारी हैं या गैर प्रदूषणकारी यह तय करने का कोई एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 10 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित करना आम जनता के लिए चुनौतीपूर्ण निर्णय साबित होगा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सरकार को इन वाहनों की सुरक्षा के लिए कानून लाने की भी मांग की है। राजधानी के सदर बाजार स्थित मिठाई पुल क्षेत्र में आज एक इमारत के गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि इमारत रात के करीब 2 बजे ढह गई। राहत कार्यों में दमकल विभाग के अतिरिक्त बचाव अभियान में दिल्ली पुलिस तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीमें लगी रहीं। NDRF के एक अधिकारी ने बताया कि रात में ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और दिन भर में मलबे को साफ किया गया।
रात को ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक बॉडी अनरिस्पॉन्सिव हमें यहाँ पे रिट्राइव की है। उसके बाद से अगले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बीच में जो यहाँ मेट्रो की साइड DMRC वाले हैं उनके इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए हैं, तो अभी मलबा हटाने का काम चल रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, नीचे यहाँ फुटपाथ के ऊपर कोई सो रहा है तो अभी तक जो सिविली ने उन्होंने बताया कोई नहीं है, लेकिन कुछ सोच रहा है कोई और ट्रिप हो या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
घटना पर शोक जताते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि उन्होंने इस क्षेत्र की इमारतों को पहले ही असुरक्षित घोषित कर उन्हें खाली करा लिया गया था। यह स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि ये संरचनाएं अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं और इसलिए एहतियात के तौर पर इन्हें खाली करवाना आवश्यक है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ ने आज नई दिल्ली में एक निजी शिक्षण संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक रिपोर्ट।
इस पहल के अंतर्गत चैम स्कॉलरशिप प्रोग्राम खिलाड़ियों को उनके स्तर के अनुसार 100%, 50% और 30% तक की छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से खिलाड़ी कहीं भी कभी भी अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें खेल मनोविज्ञान में एक निशुल्क सर्टिफिकेशन तथा एक समर्पित अकादमिक काउंसलर की सुविधा भी मिलेगी। इस अवसर पर तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि सीनियर, जूनियर तथा पैरा तीरंदाजों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है। श्री मुंडा ने रेखांकित किया कि इस पहल से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि खिलाड़ी केवल खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये दिवस हर साल 11 जुलाई को बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार एक न्याय संगत, सशक्त और समता मूलभूत समाज के दृष्टिकोण को पूरा करना चाहती है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अवसर, अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। युवाओं की भागीदारी पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि युवा ऐसे भविष्य के हकदार हैं जहां वे सोच समझकर निर्णय ले सकें, समानता के साथ जीवन जी सकें और बिना किसी सीमा के सपने देख सकें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि समावेशी नीतियों, सतत विकास और प्रत्येक जीवन के उत्थान के लिए साझा प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े, जिसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। श्रावण मास के आज शुरू होने के साथ ही दिल्ली में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के मद्देनजर दिल्ली सरकार तथा अन्य विभाग इसकी तैयारियों और श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बारे में कहा कि यात्रा का पूरा मार्ग तथा पूरी दिल्ली साफ सुथरी रहेगी। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में यमुना नदी के पुनरुद्वार पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राजधानी को एक वैश्विक गंतव्य बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में दिल्ली के लिए डिलाइट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ ने एक निजी शिक्षण संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्रावण मास के आज से शुरू होने के साथ ही दिल्ली में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तैयारी की और राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।